कामुकता कोई विलासिता नहीं है। क्यों महिला कामुकता राजनीतिक है? मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में हम एक खतरनाक सरलीकरण के शिकार हैं, जो मुझे एक पुरुष और बेटियों के पिता के रूप में परेशान करता है। महिलाओं में इच्छा को अक्सर अब भी एक किनारे के विषय के रूप में देखा जाता है, एक अच्छी बात, न कि एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में। और मैं ठीक इसी बात को सवालों के घेरे में लाना चाहता हूँ। डायने डे ला क्रूज, आत्मनिर्णय की एक आवाज। डायने डे ला क्रूज एक थेरेपिस्ट और लेखिका हैं, जो महिला यौनिकता, शर्म और आत्मनिर्णय के सवालों पर काम करती हैं। अपने इंटरव्यू और व्याख्यानों में वह यौनिकता को सामाजिक सत्ता संबंधों का आईना बताती हैं। उनका मुख्य विचार है, इच्छा कोई विलासिता नहीं है, यह गरिमा और आत्मनिर्णय का हिस्सा है। वह उस सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं जो सदियों पुरानी महिला इच्छा की अवमूल्यना के खिलाफ है। वह दिखाती हैं कि यौनिकता केवल निजी नहीं बल्कि गहराई से राजनीतिक है, क्योंकि यह तय करती है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर में कितना स्वतंत्र महसूस कर सकता है। एक बचपन और शारीरिक अनुभव, यह बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। जहां लड़के अपने शरीर को सहजता से छूना सीखते हैं सिर्फ इसलिए भी क्योंकि वे खड़े होकर पेशाब करते हैं, वहीं लड़कियों को बहुत जल्दी सुनना पड़ता है, हाथ मत लगाओ या शर्म करो। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि दिमाग में तथाकथित भावनात्मक नक्शे बनते हैं। शरीर के वे हिस्से जिन्हें नियमित रूप से छुआ और महसूस किया जाता है वहां अधिक प्रमुख होते हैं। अगर लड़कियों को यह अनुभव नहीं करने दिया जाता तो एक दूरी बन जाती है, न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक भी। परिणाम, कई महिलाएं अपने शरीर को बाद में ऐसा कुछ मानती हैं जिसे बाहर से देखा जाता है, न कि ऐसा कुछ जिसे वे भीतर से महसूस कर सकें। दोहरे मापदंडों की दुविधा। सामाजिक अपेक्षाएं इस अलगाव को और बढ़ाती हैं। महिलाएं आकर्षक हों लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, संवेदनशील हों लेकिन कृपया आत्मनिर्णयशील ना हों, आकर्षक हों लेकिन कहीं से नारीवादी न लगे। विरोधाभासों का यह खेल एक स्थायी तनाव पैदा करता है। जो इच्छा दिखाता है वह आलोचना का जोखिम उठाता है, जो उसे दबाता है वह खुद को खो देता है। खुद डायने डे ला क्रूज बताती हैं कि ये संस्कार कितने गहरे जाते हैं। मैंने एक बार सोचा, शुक्र है बेटी नहीं है, वह गर्मियों में लगभग नग्न घूमती। फिर मैंने समझा यह विचार कितना बेतुका है, उसे क्यों कपड़े पहनने चाहिए ताकि पुरुष प्रतिक्रिया न दे, असल में तो उल्टा होना चाहिए। 3. इच्छा के रूप में आत्मनिर्णय। यौन आत्मनिर्णय केवल अंतरंगता नहीं है, यह राजनीतिक है। पितृसत्ता ने इस विषय में गहराई से दखल दिया है। एक महिला जो अपनी इच्छा को जानती और जीती है मौजूदा सत्ता संरचनाओं को चुनौती देती है। वह कहती है, मैं यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ अपनी यौनिकता को अपने लिए जीने के लिए हूँ। इच्छा कोई मनमानी विलासिता या बोनस नहीं है, यह आत्मनिर्णयशील चेतना की अभिव्यक्ति है, अपने आप से एक ऐसे संबंध की जिसने गरिमा, जिज्ञासा और उपस्थिति शामिल है। अनुभव की शुरुआत अनुमति से होती है, अनुभूति अनुमति से उत्पन्न होती है। केवल वही जो खुद को अपने शरीर को महसूस करने की अनुमति देता है उसे सच में महसूस कर सकता है। यह सभी लोगों के लिए सच है, लेकिन महिलाओं से यह अनुमति पीढ़ियों से व्यवस्थित रूप से छीन ली गई है। स्पर्श, जिज्ञासा और आत्मसंपर्क कोई गौण बातें नहीं है, वे हर स्वस्थ आत्म अनुभूति की नींव है। जब महिलाएं फिर से खुद को सुनना, महसूस करना और इच्छा महसूस करने की अनुमति देना सीखती है तो कुछ नया जन्म लेता है, अपने शरीर के साथ एक आत्मविश्वासी रिश्ता जो मूल्यांकन और शर्म से परे है। इच्छा के रूप में गरिमा। इच्छा कोई विलासिता नहीं है, यह एक मानवाधिकार है। यह शरीर की धीमी लेकिन दृढ़ आवाज है जो कहती है, मैं जीवित हूं। जब महिलाएं अपनी इच्छा को फिर से अपनी गरिमा का हिस्सा मानती हैं तो यह केवल उनकी यौनिकता को नहीं बदलता, यह उनके जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी बदल देता है। निष्कर्ष, महिला इच्छा कोई निजी विवरण नहीं बल्कि एक सामाजिक दिशा सूचक है। एक संस्कृति जो महिलाओं को अपने शरीर के लिए शर्मिंदा होना सिखाती है, आत्मनिर्णय को रोकती है और गरिमा को कमजोर करती है। लेकिन एक ऐसी संस्कृति जो महिला इच्छा का सम्मान करती है, समझती है, अनुभूति अनुमति से शुरू होती है और आत्मनिर्णय स्पर्श से शुरू होता है। इच्छा कोई विलासिता नहीं है, यह गरिमा और आत्मनिर्णय का हिस्सा है। डायन गेला क्रूज।